ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे जब विशेष भक्ति करते हैं तो हमारा पहला लक्ष्य ही यही होता है कि हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, अशरीरी स्थिति का हम अनुभव करें, क्योंकि बाबा कहते हैं कि यही हमारा पहला पाठ है और यही अंतिम पाठ भी है, क्योंकि अंत तक हमें ये पाठ याद नहीं हो पाता। रोज रोज बाबा हमें पढ़ाते हैं, कोई मुरली ऐसी नहीं होती जिस दिन बाबा ये नहीं कहते। आज की मुरली में भी क्या था, नंबर वन ड्रिल कौन सी है, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर वन ड्रिल है। फिर बाबा ने अलग अलग तरह से मुरली में समझाया, ये भी कहा मनमना भव मध्याची भव मामेकम याद करो, ये भी ड्रिल है। तो बाबा ने कहा अशरीरी बनने से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाती है। तो हम आत्मा हैं, हम याद रखते हैं जब हम योग में बैठते हैं, क्योंकि आत्मा समझ करके ही परमात्मा को याद करना है। और सारा दिन कर्म करते हैं तो फिर कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, रहना चाहिए सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करना, लेकिन कर्म कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जब हमारी एनर्जी कम हो जाती है, जब तक ज्ञान योग की शक्ति है, सवेरे अमृत वेला किया, मुरली सुनी, तो जब तक वो पावर चलती है तब तक देह अभिमान नहीं आता, और जब वो खत्म हो जाता है, ड्रेन हो जाता है, फिर उसके बाद कब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं वो भी हमें पता नहीं चलता। और उसकी निशानी क्या है, देह अभिमान में अब आने लगे हैं, आ गए हैं, उसकी निशानी क्या होती है, हमें गुस्सा आ जाएगा, कोई भी ऐसी बात हुई तो गुस्सा कर लेंगे, नाराज हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे किसी बात को लेकर के, अशांत हो जाना, मूड ऑफ कर लेना, ये सब क्या है, देह अभिमान है ना। तो पुराने संस्कार, देह अभिमान विकारों की जड़ है, तो देह अभिमान इनको लाता है, ये हमारे पुराने संस्कार होते हैं। तो फिर हमें लगता है हमने सब तो किया, अमृत वेला भी किया, मुरली भी सुनी, फिर क्यों मेरा मन ऐसा हो रहा है, क्यों मेरी स्थिति पर असर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है स्थिति पर असर, क्योंकि हम आत्माभिमानी स्थिति में नहीं हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कई बार मुरलियों में ये कह चुके हैं कि हर घंटे में कुछ मिनट हमें अशरीरी बनना है, अशरीरी स्थिति के अभ्यास को हमें पक्का करना है। भले बाबा ये भी कहते हैं देही अभिमानी बनने में मेहनत है, क्यों मेहनत है, 63 जन्मों से देह समझ रहे हैं ना अपने आप को, तो इतने पक्के हो चुके हैं वो संस्कार की आत्मा समझने में हमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत हमें करनी है उसके, क्योंकि उसी से हमें सारी प्राप्तियां हैं। इसीलिए बाबा हमें चाहते हैं कि हम हमेशा ही देही अभिमानी स्थिति में रहें या अशरीरी स्थिति के अनुभव में हम रहें। बस जब हमें कर्म करना है तभी हम कर्मेंद्रियों का आधार लें, कर्मेंद्रियों से कर्म करें और ये साकार शरीर के भान में आए, और नहीं तो फिर हम न्यारे हो जाएं। तो जो अपने यहाँ मधुबन में हर घंटे में एक मिनट गीत बजता है, बजता है ना, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी, ये तब से बजना शुरू हुआ जब बाबा ने कहा हर घंटे में कुछ मिनट, अगर कुछ मिनट भी नहीं तो एक मिनट तो निकाल सकते हो, तो एक मिनट भी आप अशरीरी हो जाओ, तो फिर ये गीत बजना शुरू हुआ कि एक मिनट के लिए ही बजता है वो, ये हमें याद दिलाने के लिए कि अभी एक मिनट के लिए हमें बिल्कुल देह भान से न्यारा हो जाना है। लेकिन उतना हम अटेंशन रखें तो और हम कर सकते हैं। केवल मधुबन की बात नहीं, हम जहां भी अपने स्थानों पर हैं, आजकल हमारे पास सब साधन हैं, आजकल हम मोबाइल में भी वो सेट कर सकते हैं कि वो हर घंटे हमको रिमाइंडर मिल जाए कि हाँ ये एक मिनट के लिए मुझे अशरीरी हो जाना। तो केवल आत्मा समझना नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं, अशरीरी स्थिति में हमें ये भी स्मृति में लाना है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा, स्मृति ही समर्थि दिलाती है। तो कौन सी आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं, सब हमें मालूम है मैं कौन सी आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं? श्रेष्ठ आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, देवता बनने वाली आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं और भगवान की चुनी हुई विशेष आत्मा हूं। किसी विशेषता के कारण ही बाबा ने हमें चुना है। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं और मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं विजयी आत्मा हूं, ना कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। फिर विघ्न विनाशक हूं और भी मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, विश्व परिवर्तक हूं, फिर विश्व की आधार मुहूर्त हूं। कितने सुमान बाबा ने हमें दिए। तो ये हम हैं, ऐसे कोई बाबा खुश करने के लिए हमें नहीं कहते हैं ना। कई बार हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते कि बाबा तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, तो हम तो ऐसे है ही नहीं। तो अगर हम स्वीकार करते हैं तो सचमुच हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है और वो खुशी और नशा हमें अनुभव होता है, जिसको बाबा नारायणी नशा कहते हैं। तो स्मृति स्वरूप बनेंगे तो इसके ऊपर एक कहानी आती है कि हम हैं लेकिन कैसे हम भूल गए, तो अपने स्वरूप से हम विस्मृत होकर के और बिल्कुल दूर हो गए। एक बार एक राजा का छोटा सा बच्चा, शिशु था, शिशु माना एक साल से छोटा बच्चा, उसको शिशु कहते हैं, तो उसको वो महल से गायब हो गया। तो राजा को पता नहीं चला कौन ले गया, सब जगह ढूंढवाया, नहीं मिला वो बच्चा। एक्चुअली वो भेड़िया उठा करके ले गया था उसको। अब वो भेड़िया, जो बच्चा इतना छोटा था कि वो भेड़िया ये डिफरेंस नहीं कर पाया कि ये मेरा बच्चा है या इंसान का बच्चा है, तो भेड़िए ने उसको खाया नहीं लेकिन अपने ही बच्चे की तरह पालने लगा उसको। तो वो भेड़ियों में बड़ा होने लगा, जो राजकुमार था तो भेड़ियों जैसा ही आवाज निकालना, क्योंकि वो जो सीखेगा वही करेगा। तो भेड़ी जैसे आवाज निकालते थे वैसे ही आवाज निकालनी शुरू कर दी उसने। फिर भेड़ी चार टांगों पे चलते हैं तो उसने भी नकल करके वैसे ही, फिर जब बड़ा हुआ चलने जैसा तो वैसे ही चलना शुरू किया। तो उसके नाखून भी बड़े बड़े होने लग गए और शरीर पर बाल भी, क्योंकि अब उसी उसमें था प्रकृति में, तो उसका शरीर भी उसी अनुसार ढलने लगा, तो शरीर पर बाल भी आने लगे। अब 5 साल बीत गए इस बात को, वो राजकुमार भेड़िया पूरी तरह भेड़िया बन चुका था। जैसे भेड़िए शिकार करते थे, शिकार करना, मांस खाना, ये सब। राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है, तो जब वो शिकार खेलने जाता है तो ये भेड़ियों का झुंड उसके सामने पड़ता है। तो जैसे ही राजा और सैनिक सामने आते हैं तो भेड़िए तो भाग जाते हैं, क्योंकि वो तो तेज भाग सकते हैं, लेकिन ये जो इंसान भेड़िया था वो नहीं भाग पाता इतना तेज, पीछे रह जाता है। तो फिर तीर चलाने की बजाय राजा को थोड़ा डाउट होता है उसकी चाल से और उसकी थोड़ी बनावट से कि ये रियल भेड़िया तो नहीं लग रहा है। तो उसने सैनिकों को कहा इसको लेकर आओ। तो जब वो लाते हैं तो पता चलता है कि ये तो भेड़िया नहीं है, इंसान है, इंसान का बच्चा जो है ये भेड़िया बन चुका है। तो उसको ले आते हैं महल में, महल में ले आते हैं और फिर उसको पूरी तरह से नहला धुला के स्वच्छ करके जब वस्त्र वगैरह पहनाए जाते हैं तो उसकी राजकुमार की कोई निशानी थी शरीर पर। तो राजा जब देखता है, राजा देखता है तो देखता है कि तो वही निशानी है जो शिशु गुम हो गया था, ये वही है, लेकिन अब तो ये भेड़िया बन चुका है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो वो सोचने लगा, फिर उसने अनाउंस कराया, घोषणा करवाई अपने राज्य में कि जो इस भेड़िए को इंसान बना सकता है, एक कोई ट्यूटर लगाना पड़ेगा, एक शिक्षक नियुक्त करना पड़ेगा इसके लिए, जो इसको इंसान बनाए। तो इंसान की भाषा नहीं बोलता, समझता नहीं कुछ भी। तो फिर एक ने हिम्मत की, बाकी तो किसी ने हिम्मत नहीं की, एक आया, उसने कहा महाराज, इनाम के लालच में एक आया, तो उसने कहा कि मुझे समय लगेगा, मैं कोशिश करता हूँ। और उसने रोज उसको समझाना शुरू किया, इंसान क्या होता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, सब। तो इतना जल्दी वो नहीं सीख पा रहा था, मुश्किल हो रही थी उसको, क्योंकि ढल गया था शरीर जो है वो भेड़िए की, उसमें अब फिजियोथेरेपिस्ट भी रखना पड़ा क्योंकि हड्डियां ही पूरी मुड़ गई थी उसकी। फिर धीरे धीरे साल भर लग गया जब उसने इंसान की तरह समझना शुरू किया, थोड़ा बोलना भी शुरू किया, चलना भी शुरू किया, खाना भी शुरू किया। तो जब राजा ने देखा तो वो बहुत खुश हुआ कि ठीक है, आज मैं देख रहा हूँ कि ये अब भेड़िया जैसा नहीं लेकिन इंसान जैसे बोलने लगा है, करने लगा है। तो उसने उसको इनाम दिया, पर उसने कहा कि ये तो साधारण इंसान नहीं है, ये तो राजकुमार है। तो उसको ये भी सिखाना है कि एक राजकुमार की चलन कैसी होती है, एक राजकुमार कैसे रहता है, तो ये सारी भी शिक्षा देनी है उसको। तो फिर उसने वो उसको मेहनत करना शुरू किया। तो ये कहानी का भाव क्या है कि ऐसे नहीं है कि वो इंसान नहीं था, लेकिन जब वो भेड़ियों के संग में चला गया तो क्या बन गया, भेड़िया बन गया। और फिर उसको जब इंसान मिले तो इंसान बनने में कितना समय लग गया, एकदम वो इंसान नहीं बन पाया, मेहनत करनी पड़ी उसके पीछे वापस उसको अपने इंसान के रूप में आने में। और ऐसे भी नहीं कि वो राजकुमार नहीं था, राजकुमार था, लेकिन वो राजकुमार की पर्सनालिटी बनाने में भी उसे कितना वक्त लगा। तो यही हमारे साथ होता है कि जब हम द्वापर युग से माया रावण के संग में आ जाते हैं तो हम अपने आत्मिक जो हमारा असली रूप है उसको हम भूल गए और देह अभिमान में आ गए। माना जो कहा भेड़ियों वाला संग, एक उससे हम तुलना कर सकते हैं। और फिर पूरी तरह से माया के रूप में आकर के हम उसी तरह से ढल गए पांच विकारों में। और जब बाबा आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो मेरा ओरिजिनल रूप है, तो उसमें आने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रोज बाबा हमें याद दिलाते हैं, तब जाकर के मेहनत करके, जैसे हम सुनते हैं ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की, रोज बाबा आत्मा का अभ्यास करते थे, रोज अपनी डायरी में एक एक नाम से कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, और इस तरह से बाबा ने प्रैक्टिस की, अपनी आत्मिक दृष्टि को पक्का किया। दादियों ने भी, दादियां भी अपने अनुभव सुनाती है कि उस समय ज्यादा ज्ञान था भी नहीं, आत्मा का ज्ञान ही सबसे पहले शिव बाबा ने दिया। और जब बाबा दृष्टि देते थे तो अशरीरी स्थिति का ही अनुभव होता था, सब जो है वो अशरीरी होकर के ध्यान में चले जाते थे। तो बोला घंटों हम उस स्थिति में रहते थे, घंटे निकल गए हमें पता ही नहीं चलता था। तो हमें भी वो मेहनत करनी पड़ेगी ना, हम केवल सुनने से अशरीरी हो जाएंगे, होगा नहीं, होता है, हम सब अनुभवी हैं इस बात के। फिर ऐसे भी नहीं कि जो सोमान बाबा हमें देते हैं वो हम नहीं है, जैसे कि वो राजकुमार नहीं था, ऐसा तो नहीं था। तो हम भी देवता थे, हम भी राजाई में थे, हम भी पूज्य थे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो बाबा हमें बताता है कि हम बाबा के पुरुषोत्तम, ब्राह्मण, कुलभूषण, राज ऋषि, होली हंस, जो भी हैं सब हैं, लेकिन फिर से वो स्मृति में लाने में, हमें उस स्वरूप में स्थित होने में हमें क्या करना पड़ रहा है, मेहनत। और वो मेहनत यही है, बार 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 हमें उसे स्मृति में लाना है, तब वो हमारा स्वरूप इमर्ज होगा, जो हमारा वो ओरिजिनल स्वरूप है आत्मा का। तो ये अगर हर घंटे हम, कई बाबा के बच्चे ये मेहनत करते हैं कि अमृत वेले से ही वो अपना स्वमान निश्चित कर लेते हैं कि आज के दिन मुझे सारा दिन इस स्मृति के अनुभव में रहना है, अलग अलग तरह से मुझे उसको अनुभव करना है। मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूं मानो, तो दिल तख्त नशीन हूं तो दिल तख्त नशीन कौन हो सकते हैं भगवान के, कौन हो सकते हैं? बाबा के अति प्यारे, दिल तख्त नशीन माना जो भगवान के बहुत प्यारे हैं, समीप हैं, वो दिल तख्त नशीन है। तो सबसे पहले तो वो आज्ञाकारी होंगे जो बाबा के श्रीमत पर पूरी तरह से चलने वाले होंगे। दूसरा उनकी धारणा क्या होनी चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई। फिर सच्चे दिल पर साहब राजी होता है तो वो सच्चाई सफाई वाले होंगे, जिनका मन बिल्कुल शुद्ध है, स्वच्छ है, जो जैसा बाबा चाहता है, ऐसे नहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो अगर मैं दिल तख्त नशीन हूं तो वो मेरी क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, तो ऐसा अभ्यास करना माना उसकी गहराई में जाना, तो सचमुच हम अनुभव करेंगे उस स्वमान की स्थिति का अनुभव करना हमारे लिए फिर आसान होगा। और वो बाबा भी हमें, क्योंकि हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा भी अपने आप इतने अच्छे अच्छे अनुभव फिर हमें कराते हैं। फिर जब हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो हमारा चेहरा, चेहरा उसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी हमारे चेहरे पर वो रूहानियत होती है, चेहरे पर वो प्यूरिटी होती है, क्योंकि आत्मिक दृष्टिवृत्ति शुद्ध दृष्टिवृत्ति है। मैं अपने को भी आत्मा समझ रही हूं और जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं उनको भी हम क्या देखकर व्यवहार करते हैं, क्या देखकर व्यवहार करेंगे, आत्मा ही देखेंगे। बाबा तो कहता है हमारी नजर कहां जानी चाहिए, कहां जानी चाहिए, आत्मा पर। उसको क्या नाम देते हैं बाबा, क्या नाम देते हैं, मस्तक मणि। तो मस्तक मणि पर ही मेरी नजर जानी चाहिए, यानी बाबा कहता है ये देह रूपी सांप है और आत्मा क्या है, उसकी मणि है, मस्तक मणि पर मेरी नजर है तो मेरी पवित्र दृष्टि है। और अगर देह पर मेरी दृष्टि चली गई तो मैंने किसको टच किया, किसको टच किया, बाबा कहते हैं सांप को टच किया। देह को देखते ही अगर दैहिक दृष्टि हुई तो हमको सबको मालूम है, हाँ दैहिक दृष्टि माना उसको बाबा कहता है क्रिमिनल आई, एक है सिविल आई और दूसरी है क्रिमिनल आई। तो दृष्टि वृत्ति चंचल होने की संभावना है, क्योंकि देह अभिमान में आने के हमारे पुराने संस्कार हैं। तो अगर हम, क्योंकि अब दैहिक स्तर पर कई तरह के व्यक्तित्व पर्सनालिटीज होती हैं, किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है, तो अगर हम उसके प्रभाव में आ गए तो हम आकर्षण में आ जाएंगे। अगर हम देह के आकर्षण में आए, वही बाबा ने कहा उसको टच किया तो देह क्या है, सांप है। आज तो है ही देह की दुनिया ना, देह की दुनिया है माना लोग अपनी देह को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, कई तरह के फैशन करते हैं, कई तरह की ड्रेसेस पहनते हैं, और हम भी कलियुगी दुनिया में उसी वातावरण में रहते हैं। तो अगर मेरी आत्मिक दृष्टि वृत्ति पक्की नहीं है तो कहां भी हम उस तरफ जा सकते हैं। और गए तो बाबा ने कहा उसको आपने टच किया तो सांप में विष होता है, और वो विष क्या करेगा, है ना। तो अगर विष का प्रभाव आ गया तो हमारी जो धारणा है उस माया से हमने हार खा ली, ऐसा ही होगा। तो हम सदा ही जब आत्मिक दृष्टि रखते हैं तो वो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी अनुभव होते हैं, वो महसूस करते हैं कि हमारा देखने का तरीका और जो लोग देखते हैं उनसे फर्क है। और वो वाइब्रेशंस उनकी सेवा करते हैं, और हमारे लिए फायदा ये होता है कि उनके तमोगुणी वाइब्रेशंस, आज की दुनिया में तो कोई है ही नहीं ऐसा, तो उनके तो वही वाइब्रेशंस हैं, तो उनसे हम बच जाते हैं, उनका प्रभाव भी हम पर पड़ सकता है। इसीलिए कई बार कई भाई बहने ये भी कहते हैं, क्या करें, लोग ही ऐसे थे ना, क्या करें, वातावरण ही ऐसा था ना, तो मेरी गलती नहीं है। फिर हम क्या कहते हैं, गलती मेरी नहीं है, गलती किसकी है, जैसे हम कहते हैं ना, उंगली हम किसकी और करते हैं। अब यहां क्या, कौन परिवर्तक है, वो परिवर्तक है या मैं परिवर्तक हूं, मैं पतितों को पावन बनाने वाली हूं या वो पतित मुझ पावन को पतित बनाने वाले हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन कौन है पतित पावन, किसको बाबा ने टाइटल दिया है, हम विश्व परिवर्तक हैं ना, तो हमें पावन बनाना है आत्माओं को। अगर उनके वो वाइब्रेशन से हम प्रभाव में आ गए तो इसका मतलब हम इतने शक्तिशाली अभी है ही नहीं, हम तो प्रकृति को भी पावन बनाने वाले हैं। तो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, तो क्या आत्माओं को आप पावन नहीं बना सकते हो। तो ये प्रभाव हमारा तब होता है जब निरंतर हमारा ये अटेंशन है अपने ऊपर, तब जाकर के वो पवित्रता का प्रभाव आत्माओं पर पड़ता है। मुझे अनुभव है, हम विदेश गए थे जब पहली बार मैं अमेरिका गई, तो हम जानते हैं भारत की कल्चर और विदेश की कल्चर में बहुत फर्क है। वहां तो सब कुछ ओपन होता है, तो जहां सेंटर पर मैं थी, वो बहन वहां के जो सिटी मेयर थे उनसे उनका संपर्क था, जैसे हम वीआईपीस की सेवा करते हैं तो ऐसे समय प्रति समय वो मेयर से मिलती रहती थी कोई ना कोई प्रोग्राम के निमित्त। तो मेयर ने, उनका जन्मदिन था मेयर का, और उन्होंने वो अपनी बहन को, सेंटर की बहन को निमंत्रण दिया था। तो फिर मैं थी सेंटर पर, तो उसने मुझे बोला कि आप भी चलो, उनकी सेवा होगी, आप मधुबन से आए हो। तो मैंने कहा ठीक है, पर उसने मुझे थोड़ा इशारा दिया कि देखो ये अमेरिकन्स हैं और भारत जैसा यहाँ कुछ नहीं होगा, तो आप ऑकवर्ड नहीं समझना कुछ भी, माना ये यहाँ के लिए सब बहुत नेचुरल है। तो मैंने कहा ठीक है, इतना तो मैं भी जानती हूँ और समझती हूँ, और मैंने कहा बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया है, तो समय पर अगर हम ज्ञान यूज करते हैं तो ये बातें हमारे लिए इतना मायने नहीं रखती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। फिर हम गए वहां पर, तो वही था, वो तो उनकी पार्टी थी, और क्योंकि हमें बुलाया था उन्होंने, तो हम तो खाते भी नहीं हैं, अब हम सब जानते हैं, फिर हमको क्या लेना है, तो कुछ जो भी स्पेशल जूसेस वगैरह उन्होंने रखे थे और वो सब जो हमारे लायक था वो हमने लिया। बाकी तो हम जैसे मैंने अपने मन को ऐसे सेट किया कि मुझे बाबा की याद में रहना है और इन सब आत्माओं की मुझे मनसा सेवा करनी है और सकाश देनी है, बस यही मेरा काम है, मैं यहाँ यही सेवा करने के लिए आई हूँ और मुझे कुछ नहीं देखना क्या चल रहा है। बाद में उनकी पार्टी पूरी हुई, हम दो ही थे वाइट ड्रेस में, बाकी तो उनकी अपनी ड्रेस होती है, सभी तो वही ड्रेस पहने हुए थे। तो कितने लोगों ने जो हमसे मिलते हुए गए, बहन को तो जानते थे, मुझे तो नहीं जानते थे, लेकिन उनको कहा कि हमें ऐसा लग रहा था कि आज हमारी पार्टी में कोई एंजल्स आए हुए हैं। तो ये फीलिंग क्यों आई उनको, क्योंकि हमने अपनी स्थिति को वैसा रखा है ना, तो वो वाइब्रेशंस हमसे फील हुए उन लोगों के, हम उनके प्रभाव में नहीं आए लेकिन हमारे वाइब्रेशंस ने उनको ये फील कराया कि कोई फरिश्ते हैं आज हमारी सभा में यहाँ पर। तो हम हमेशा जो बाबा हमें कहता है, अगर हम उस तरह की अपनी धारणा रखते हैं, स्मृति रखते हैं, तो उसका प्रभाव अन्य आत्माओं पर पड़ता है। ऐसे ही अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमारे योग को भी पावरफुल बनाता है, क्योंकि हम योग लगाते हैं, रोज हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन ज्वालामुखी योग करना, योग अग्नि रूप में हो, लगन में हम मगन हो जाएं, ऐसे योग की स्थिति हमारी कम बनती है। सामान्यतः हमारा होता है साधारण रूरिहान वाला योग, बाबा से लेन देन कर लेते हैं, थोड़ा बैठते हैं बाबा की याद में, तो सारे दिन की बातें जो मेरे मन में इकट्ठी हो गई वो सुना दी मैंने बाबा को, या कुछ फरियाद करनी है तो वो फरियाद कर ली, या जो भी और भी कुछ बातें मेरे मन में कोई बोझ है वो हमने बाबा को सुना दिया और हमारा योग का टाइम पूरा हो गया। तो शांति मिली, ऐसे नहीं कि नहीं मिलती है, शांति भी मिली, थोड़ा शक्ति भी बाबा से अनुभव हुई, लेकिन हमारे संस्कारों पर उसका कोई असर नहीं होता और हमारे विकर्म भी विनाश नहीं होते ऐसे ही योग से, क्योंकि योग अग्नि नहीं है। साधारण जैसे हम कहते हैं सूरज की रोशनी में कागज पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा, सालों पड़ा रहेगा, कुछ थोड़ी होने वाला है, लेकिन अगर हमने एक लेंस लगा के फोकस कर दिया सूरज की किरणों को, एक पॉइंट पर फोकस किया, तो वो कागज कुछ मिनट में ही जल जाता है। तो बाबा की शक्तियां आत्मा पर पूरी तरह से फोकस हो, तो कहते हैं हमारी बीज रूप स्थिति, विदेही स्थिति, एक अशरीरी स्थिति है चलते फिरते आत्मा समझकर कर्म व्यवहार करना, लेकिन विदेही स्थिति माना पूरी तरह से देह से न्यारा होकर जब हम परम धाम में बाबा के साथ हैं, और वो बीज रूप स्थिति में जो हम बाबा की पूरी शक्ति अपने ऊपर ग्रहण करते हैं, तो फिर हमारे विकर्म विनाश होते हैं। इसीलिए कहा अग्नि में आप सोना डाल दो तो क्या होता है, सारी उसकी अलॉय निकल जाती है, या लोहे को भी डाल दो तो इतना कठोर लोहा भी पिघल जाता है। तो अग्नि वो चाहिए, उतनी टेम्परेचर, उतनी पावर चाहिए उसके अंदर, तो तब हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं और आत्मा पावन होती है और हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, यानी ओरिजिनल संस्कार हमारे हमारे अपने बनने लगते हैं। और नहीं तो 20 साल हो गए मेरे को ज्ञान में चलते हुए, लेकिन अभी तक मेरा गुस्से का संस्कार गया ही नहीं, या अभी तक मेरा व्यर्थ सोचने का संस्कार गया ही नहीं। कितने प्रकार के हमारे देह अभिमान के संस्कार हैं, दब जाते हैं थोड़ा समय, हमने ज्ञान सुना, क्लास सुनी, थोड़ा समय दब गए, फिर उस समय जब कोई परिस्थिति आई तब पता नहीं कहाँ से आ गया, मैंने तो उसके ऊपर मेहनत की थी, अभी कहाँ से आ रहा है पता नहीं, तो क्या किया हमने, सिर्फ उसको थोड़ा सा सप्रेस कर दिया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, हमेशा के लिए भस्म नहीं हुआ वो। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जब पावरफुल योग अग्नि होती है तभी हमारा वो परिवर्तन हो पाता है। तो बीज रूप स्थिति वाला, बिंदु रूप स्थिति वाला जो योग है, जिसे हम रियल अशरीरी स्थिति का योग कहेंगे, उससे हमारा परिवर्तन होता है। और फिर अशरीरी स्थिति हमारे कर्म भोग को सूली से कांटा बनाती है, क्योंकि सोल कॉन्शियस होना और बीमारी कॉन्शियस होना, इसमें फर्क है। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई भी तकलीफ होती है शरीर का कर्म भोग, कर्म भोग तो हमें यहाँ ही चुकतू करने हैं, तो जब शरीर का कर्म भोग हमारे सामने आता है तो हम बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो बीमारी के बारे में चिंतन किया तो क्या होगा, बीमारी बढ़ेगी। लेकिन यदि मैं सोल कॉन्शियस हूँ, अगर रूहानियत की मेरी स्थिति है, तो बाबा से मेरा कनेक्शन होता है और बाबा की मुझे दुआएं मिलती हैं, और उससे जो मेरे मन की शक्ति, मेरा मन स्वस्थ रहता है, इसको बाबा कहते हैं ना, अगर आत्मा स्वस्थ है तो फिर शरीर भी जल्दी स्वस्थ हो जाता है, तो मन स्वस्थ रहता है, मन शक्तिशाली रहता है, तो बीमारी का एक तो कष्ट अनुभव नहीं होता, जितना दुख होना चाहिए उतना दुख हमें फील नहीं होता, और अगर है भी सही, दवा और दुआ दोनों के मेल से बाबा कहता है, वो जल्दी हिसाब किताब खत्म हो जाता है। नहीं तो कईयों की क्या आदत होती है, सोचते हैं, सोचने के साथ साथ फिर वर्णन भी करते हैं, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और जितना हम वर्णन भी करेंगे वो भी बीमारी को क्या होता है, बढ़ाने वाला। और हम क्या बांट रहे हैं, वर्णन करके क्या बांट रहे हैं, हम सुख बांट रहे हैं, दुख बांट रहे हैं, अपने दुख से दूसरे को भी हम दुखी कर रहे हैं, ऐसा ही हुआ ना, तो वो थोड़ी हमें करना है। और इसीलिए हम कहते हैं जब हम आत्मस्वरूप में होते हैं तो आत्मा के गुण इमर्ज होते हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो वो हम व्यवहार में महसूस करते हैं। किसी को भी हमारे संपर्क में आने से ऐसा लगेगा कि इनसे बात करके तो मेरा मन शांत हो गया ना, मुझे शांति मिली, या कभी भी मैं इनसे बात करती हूं तो मेरा मन अशांत भी होता है तो जैसे मैं हल्की हो जाती हूं, या इनसे बात करके मेरा दुख जैसे दूर हो गया। कई बार बोलते भी हैं लोग, बोल भी देते हैं कि हाँ आपसे बात करके कुछ अलग ही लगता है। तो क्यों फील होता है? क्योंकि हम अपने उस ओरिजिनल गुणों को वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसको हम ऑरा कहते हैं। हमारा ऑरा किससे बनता है? हमारी स्मृति से बनता है। तो जितना मेरी आत्मिक स्मृति पावरफुल है उतना ही आत्मा के गुण मेरे वाइब्रेशंस बना रहे हैं, और जो भी मेरे उस संग में आएगा, जैसे हम बाबा के संग में जाते हैं तो हम वो फील करते हैं, तो जो भी हमारे संग में आएगा तो उसको भी फिर वही फीलिंग्स आएंगी, वही महसूसता उस आत्मा को आएगी। तो हम कईयों के अनुभव सुनते हैं कैसे उनके कर्म भोग सहज, ब्राह्मणों के भी, कई ब्राह्मणों के भी इतने अच्छे अनुभव होते हैं। आप सब में से भी कईयों के होंगे, लेकिन अब ऐसे तो सुने नहीं जा सकते, तो मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ। कुछ साल पहले, करीब 12 साल हो गए लगभग, एक्सीडेंट हुआ हमारा, हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ, तो मैं तो बेहोश हो गई। उस समय मैं कहीं सेवा से आ रही थी और बाबा की याद में ही थी, लेकिन मुझे नींद लग गई। मैं आगे की सीट पर, ड्राइवर की साइड सीट पर, जैसे आगे की सीट पर बैठी थी तो नींद लग गई, और उसी उसमें एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे तो पता भी नहीं चला क्योंकि नींद में थी, और फिर सीधा बेहोश हो गई तो मुझे यही पता नहीं चला कि एक्सीडेंट हुआ। फिर बाद में जब हॉस्पिटल पहुंचा दिया सबने और सब कुछ हो गया ट्रीटमेंट, तब एक घंटे के बाद मुझे लगभग होश आया। तो मेरे को सीधा ही, क्योंकि जब वो पोजीशन में मैं गई थी तब बाबा की याद में थी, तो जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं अपने को आत्मा रूप में ही महसूस कर रही थी, अपने आप, बाबा की मदद भी होगी निश्चित रूप से। और फिर मैंने सबको देखा अपने सामने, बहुत भीड़ थी उस समय मेरे आगे, क्योंकि ऐसा हुआ तो जैसे ही जिसको समाचार मिलता है सब पहुंच जाते हैं। तो मैं सोचने लगी ये सब क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ? तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, और मेरे कपड़े भी मुझे दिखाई दिए कि लाल लाल है, इसका मतलब ब्लड है, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैंने कोई दर्द फील नहीं किया और कोई भय भी नहीं था मेरे मन में, जैसे होता है ना एक मृत्यु का भय, तुरंत क्या होगा कैसे होगा, कोई थॉट नहीं। सबसे ज्यादा इंसान को अपनी देह से मोह होता है और इसीलिए मरने का डर होता है। तो हम क्या कहते हैं, आत्मा का ज्ञान हमें क्या मदद करता है, कौन सा भय पहले निकाल देता है? मृत्यु का भय, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और आत्मा तो कभी मरने वाली नहीं। और फिर अगर हम ज्ञान में हैं तो हमें ये भी पता है कि हमारा भविष्य तो बहुत ऊंचा है और बहुत श्रेष्ठ है, तो अगर जाएंगे भी तो बाबा हमें कहाँ भेजने वाले हैं, हम कहीं आगे सेवा में ही जाने वाले हैं माना। पर कोई भी थॉट नहीं था, ये सारी तो मैं आपको सुना रही हूं, पर उस समय मुझे कोई थॉट नहीं था। और एक जैसे टचिंग बाबा की मुझे लगी उस समय कि बच्ची सब ठीक हो जाएगा, और वो फिक्स हो गया, जैसे कि वो हिलता ही नहीं, अचल, जिसको बाबा कहते हैं ना अचल अटल, जैसे वो स्थिति। तो मेरे उस समय ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और डॉक्टर्स जो भी पूछ रहे थे वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, मतलब इधर या उधर जो भी होगा हमें अभी अभी कोई जवाब नहीं दे सकते जब तक कि पूरी जांच नहीं हो जाए और जब तक 72 घंटे ना बीत जाए। तो फिर सारी जांच शुरू हुई, सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ क्योंकि हेड इंजरी थी सारी। तो देखा कि अंदर तो कुछ भी नहीं है, ब्रेन ठीक था, ऊपर ही थोड़ा फ्रैक्चर हुआ था और ऊपर से ही सारा ब्लड वगैरह बहा था, तो सब टांके वगैरह तो लगा दिए थे उन्होंने, और नीचे थोड़ा पैर में फ्रैक्चर था। तो मुझे आईसीयू में रखा गया और वो 3 दिन मैं आईसीयू में थी, तो भी मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई मुझे प्रॉब्लम है। बाबा की भी मदद थी मैं ऐसा कहूंगी, लेकिन मैंने अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को बिल्कुल मेंटेन रखा। और सुई की नोक लगने पर जो दर्द होता है, इतना भी दर्द मैंने फील नहीं किया। जैसे कि मैं आराम से रेस्ट कर रही हूँ अपने बेड पर, मैं सो रही हूँ, और कोई मिलने वाले भी आते थे तो मैं अच्छे से मिल लेती थी। बहुत बात करने की तो मना थी, लेकिन मिल लेती थी। और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। मैं रूम पर आ गई और सब कुछ ठीक ठाक था। तो थोड़ा सा क्योंकि पैर में प्लास्टर था, तो वो 1.5 महीने के लिए डॉक्टर ने बोला था, और वो 1.5 महीना निकल गया, प्लास्टर उतरा और मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब ऐसा भी नहीं लगता था कि कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। तो कितना सहज वो हिसाब किताब पार हो गया। हिसाब किताब तो सामने आने ही है, होंगे कोई पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा, क्योंकि इस जन्म में तो हम बचपन से ज्ञान में आ गए। तो लेकिन वो बाबा की मदद से और हमारी अपनी स्टेज से हम कितना सहज, जैसे मैंने कहा कि वो हमें लगता है कांटे जैसा था, सूली जैसी बात कि जा भी सकते थे, लेकिन किसमें बदल गई वो, सिंपल से कांटा, कांटे जैसा भी दर्द नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगता था कि इतना ब्राह्मण परिवार का प्यार मिला, बड़ों की इतनी दुआएं मिली, तो ऐसे लगा कि ये तो मैं और ही जैसे कि उनके समीप आई, और मेरे लिए तो वो जैसे फूलों की तरह था, है ना। तो ये हम अनुभव करते हैं। तो लेकिन जो बाबा कहता है वैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। बाबा के लिए हम सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा से जब कोई मिलने आते थे, बाबा से जब भी दादियां मिलती थी, और जो भी हमारे बड़े अनुभव सुनाते हैं जो बाबा के टाइम के हैं, तो ऐसे सुनाते हैं कि हम जब बाबा से मिलने जाते थे तो हम सोचते थे हम बाबा को ये समाचार सुनाएंगे, हम इतनी सेवा करके आ रहे हैं और हमको बाबा से ये पूछना है। कई कई बातें होती हैं जो हमें बाबा से पूछनी है, तो ये सब पहले से तैयारी करके आते थे कि ये सब बाबा से मिलेंगे तो ये सब करें, बातें करेंगे। लेकिन जब बाबा के सामने मिलने जाते थे तो बाबा की दृष्टि मिलते ही जैसे कि अशरीरी हो गए और सब भूल जाते थे कि बाबा से मुझे ये भी बात करनी थी, बाबा से मुझे ये भी पूछना था। फिर दादियां ऐसे सुनाती थी कि हमें लगता था पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा की दृष्टि से हम इतना भरपूर हो गए कि अब ये सब बातें हम बाबा से क्या करें, अपने आप ही जैसे उसका उत्तर मिल गया। तो बाबा ऐसे अनुभव लास्ट के दिनों में जब बाबा संपूर्णता के समीप थे, तो बाबा हमेशा ये अभ्यास करते थे कि बात करते करते भी, सॉरी, समाचार सुनते सुनते भी बाबा न्यारे हो जाते थे, जैसे गुम हो गए, और वो भी महसूस करते थे कि बाबा इस समय जैसे है ही नहीं। तो ये बाबा का अशरीरी स्थिति का अभ्यास था, और इसीलिए वो भी समझते थे कि हमें शॉर्ट करना चाहिए, इतनी लंबी बात हम बाबा का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम इतनी लंबी लंबी बात बाबा से नहीं करनी है। और बाबा हमारे लिए भी कहते हैं कि बच्चे लास्ट में हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है, क्योंकि बहुत आत्माएं होंगी जिन्हें हम ज्ञान नहीं सुना सकेंगे, ज्ञान सुनाने का समय भी नहीं होगा उस समय, सिर्फ दृष्टि से सेवा होगी तो क्या सेवा करेंगे। तो हमारी दृष्टि कैसी होगी, पावरफुल होगी, और आत्मिक दृष्टि होगी तो उन आत्माओं को वो अनुभव होगा, और उसी समय बस उसी से उनको लगेगा कि जो पाना था वो पा लिया। वो अंचली लेने वाली आत्माएं होंगी। हम बाबा के जो बच्चे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे लिए बाबा क्या कहते हैं क्या कहते हैं, चिड़ियाओं ने सागर को खप कर लिया, हाँ, तो उसका मतलब क्या है कि हमने बाबा से सर्व प्राप्तियां ले ली, जो बाबा के खजाने थे वो सब खजाने, उस सागर के सब खजाने हमने अपने में समा लिए। लेकिन जो लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं, जो भक्त आत्माएं होंगी या लास्ट की प्रजा क्वालिटी की आत्माएं होंगी, उनके लिए तो उनको थोड़ा भी मिलेगा तो मानो उनको लगेगा हमने बहुत पा लिया, लेकिन उसके लिए भी तो हमारा स्टॉक भरपूर होना चाहिए, तभी तो हम उनको दे सकेंगे। तो ये अभ्यास हमारा होगा तब जाकर के हम आत्माओं की ऐसी सेवा कर पाएंगे। फिर बाबा हमें ये भी कहते हैं कि अपने आप को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो, अशरीरी स्थिति बनाना कैसे सहज होगा। तो मेहमान समझेंगे तो मेहमान का किसी से लगाव नहीं होता है, हम कितनी भी अच्छी जगह पर जाएं, कितने भी अच्छे लोगों के साथ रहें, वहां की चीजें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्या होता है, जाते हैं ना कई स्थानों पर, हम जाते हैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर भी हम जाते होंगे, लेकिन हमें क्या पता होता है यहाँ तो हम कितने दिन हैं, 4 दिन हैं, अभी तो हमें फिर वापस जाना है। तो ठीक है, देखा हमने उसको, अगर यूज किया तो यूज भी किया, लेकिन अटैचमेंट नहीं होगा कभी भी। तो मेहमान को लगाव नहीं होता है, तो इस देह में भी मैं मेहमान हूं। बाबा कहता है कि ये देह तो आपकी नहीं है ना, आपने किसको दे दी, क्या कहा आपने, तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण। भक्तों वाला हिसाब तो नहीं है ना कि भक्त लोग मंदिर में गा के आ जाते हैं फिर बाकी सब कुछ तो मेरा ही है, तो ऐसा तो हम बाबा के बच्चे नहीं है ना, हाँ, क्या कहेंगे, तेरा माना तेरा। तो जब बाबा का है तो फिर ये तन, बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है, ये मेरा तन अब नहीं है, बाबा जैसे भी इसको सेवा में यूज करे, तो मैं तो इस तन में भी मेहमान हूं, तो इस देह से भी मेरा लगाव नहीं। मर्जीवा जन्म, तो मर्जीवा ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, जरूर हम जीते जी मरे हैं, ये हमारा नया जन्म है, अलौकिक जन्म है, उसको बाबा कहता है। और दूसरा, साक्षी होकर के इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं कर्म कराती हूं आत्मा, तो मैं आत्मा इस देह से अलग और ये शरीर बिल्कुल मेरे से अलग, ऐसा अनुभव हमें बढ़ाते जाना है कि मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूं और ये शरीर मेरा अलग है। जैसे हम वस्त्रों के लिए बिल्कुल हमें पता है कि वस्त्र अलग हैं और मैं अलग हूं, वस्त्र को मैंने पहना हुआ है, तो ये देह रूपी वस्त्र भी मैंने पहना हुआ है, ये टाइट नहीं होना चाहिए। अगर टाइट वस्त्र होते हैं तो निकालने में क्या होता है, मुश्किल होती है ना। तो अगर देह रूपी वस्त्र टाइट होंगे बाबा कहते हैं, तो फिर जब समय आएगा तब उस देह को छोड़ना मुश्किल होगा। और अगर देह रूपी वस्त्र से हमें डिटैच होने का अभ्यास है, जब चाहे, जैसे हम कछुए का मिसाल देते हैं ना, कछुए की क्या विशेषता होती है, जब चाहे कर्मेंद्रियों को यूज किया, जब चाहे कर्मेंद्रियों को समेट लिया, तो जब चाहे मैं शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूं और जब चाहे मैं न्यारी हो जाऊं, जिसको बाबा कहता है सेकंड में मुझे आवाज में आना है तो मैं आवाज में आ जाती हूं, सेकंड में मुझे न्यारा होना है, तो जितना आवाज में आना सहज है उतना ही आवाज से परे हो जाना भी सहज है। बाबा पूछते हैं ना कई बार ये सवाल, तो आप पूछेंगे अपने आप से कि क्या उतना ही सहज है हमारे लिए, कि जितना इस देह रूपी वस्त्र को यूज करना हमारे लिए सहज है उतना ही एक सेकंड में। बाबा ने कई बार ये ड्रिल कराई है, जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो बाबा ये ड्रिल कराते थे कि अभी बच्चे एक सेकंड में क्या हो जाओ, देह से न्यारे अशरीरी होकर कहां जाओ, परम धाम में, और परम धाम में मन को स्थित कर लो, फिर मन वहां रहे। एकाग्रता किसको कहते हैं हम, मन टिक जाए, मन हिले नहीं वहां से, लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, परम धाम में पहुंचे और फिर कोई बात आई, उसने क्या किया, हमें नीचे खींच लिया। फिर हम जाते हैं ऊपर परम धाम में, फिर कोई दूसरी बात मन में आई, फिर उस वो हमें नीचे खींचकर ले आई। तो मन टिकता नहीं है, लेकिन जितना समय जब भी हम चाहें मन उस स्थिति में टिक जाए, इसको एकाग्रता कहते हैं। तो ये अभ्यास हमें समय प्रति समय करना है। बाबा कहता है ये मन की कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, कि जब हम मन को जहां लगाना चाहें, जिस स्थिति में, योग की हमारी अलग अलग स्थितियां हैं, अव्यक्त स्थिति है हमारी, फरिश्ता स्थिति जिसको हम कहते हैं, सूक्ष्म शरीर में अपने आप को अनुभव करना, अंतर्वाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर माना अंतर्वाहक शरीर है, तो अंतर्वाहक शरीर को धारण करके पूरे विश्व का चक्र लगाना, फिर जहां आत्माओं को आवश्यकता है वहां आत्माओं को सहयोग देना, उन आत्माओं को सकाश देना, संदेश देना। बाबा ने कहा हम संदेश भी दे सकते हैं, और वो ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे कि कोई फरिश्ता आया या कोई लाइट आई मेरे पास और उसने आकर के मुझे ये संदेश दिया। तो ऐसी हमारी स्थिति हमें बनानी है। फिर एक बार बाबा ने कहा था कि अशरीरी स्थिति का अभ्यास अगर हम करते हैं तो आने वाले समय में हम बहुत व्यस्त होते जाएंगे, सेवाएं इतनी बढ़ती जाएंगी ना, तो व्यस्त होते हुए हमें अपने लिए समय नहीं मिलेगा। और एक एक जने को, एक एक को बाबा ने कहा था दस दस, अब तो क्या दस दस, अब तो बहुत है, इससे भी ज्यादा सेंटर संभालने होंगे। तो अगर हमने 5 मिनट भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया तो वो 5 मिनट 5 घंटे आराम की तरह हमें अनुभव होगा, इतना हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो वो स्थिति हम अनुभव करते हैं, कभी हम प्रयोग करके देखें। बाबा कहता है ना कि योग के प्रयोग करो आप, तो बाबा ने हमें समझ तो दी है, लेकिन जब तक हमने उसका प्रयोग नहीं किया तब तक वो हमें समझ में नहीं आएगा कि इतना महत्व है इसका। फिर एक बार बाबा ने ये भी कहा था कि अगर अशरीरी अकाल मूर्त स्थिति है तो कभी भी आपकी अकाले मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु की संभावनाएं या आपदाएं तो इस दुनिया में कभी भी बनती हैं। अभी भी जैसे कोविड के समय हुआ है ना, बहुत अकाल मृत्यु हुई, या ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं, अभी जैसे रेल दुर्घटना हुई, इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई उसमें भी काफी लोग एक साथ मर गए, या भूकंप आ जाता है जैसे हम सुनते रहते हैं समय प्रति समय। तो ऐसी अकाल स्थिति जब पैदा होती है तो हम सेफ हो जाएंगे, और उसमें बाबा ने ये कहा था कि हमारा जो स्वरूप है वो लाइट का हो जाएगा। माना लाइट का स्वरूप होते ही वो जैसे कि देह है ही नहीं, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे। माना जहां वो हो रहा है उससे बाबा, हमारी लाइन क्लियर होगी और बाबा से हमें ऐसी टचिंग मिलेगी कि हम अपने आप ही सेफ जगह हो जाएंगे और उससे हम बच जाएंगे। मुझे याद है एक बार, जैसे हम अमेरिका की बात कर रहे थे, तो एक बार ऐसे ही वो ट्रिप था और हमें जिस शहर में जाना था वहां तूफान आने वाला था, अनाउंस करते हैं ना कि वो आने वाला स्ट्रॉम आने वाला है, हरिकेन भी बोलते हैं, हरिकेन आने वाला है ऐसे, तो अनाउंस किया था कि हरिकेन आने वाला है उसी शहर में जहां मुझे जाना था। तो ये मेरे को भी समाचार मिला, तो जहां उससे पहले मैं जिस सेंटर पर थी तो मुझे कहा भाई बहनों ने कि दीदी आप मत जाओ, क्योंकि वो जो फोरकास्ट है उसके अनुसार वो पूरे शहर में पानी आ जाएगा और कुछ सेवा तो हो नहीं पाएगी, और मतलब कुछ कह नहीं सकते कितना नुकसान होगा उससे, बिजली चली जाती है, कई बातें हो जाती हैं जब ऐसे कुछ हरिकेन वगैरह होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो चार दिन है, अभी देखते हैं कैसा होता है क्या होता है, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं ना कि इस डायरेक्शन में तूफान आने वाला था लेकिन उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। तो हमको बाबा पर निश्चय तो है ना, तो मैं इसी निश्चय से कि बाबा ने अगर ये प्रोग्राम बनाया है, ये सेवा का प्रोग्राम बना हुआ है, तो बाबा जरूर कोई मदद करेगा इसमें। और मैंने ऐसे योग करना भी शुरू किया प्रकृति के लिए, जैसे हम सकाश देते हैं, तो वहां पर भी जिनके यहाँ हम जाने वाले थे, गीता पाठशाला थी, वो युगल थे, वो गीता पाठशाला चलाते थे, तो उन्होंने भी ये प्रयोग करना शुरू कर दिया। हम बाबा के बच्चे हैं तो फिर हम अपने साधन तो यूज करना शुरू करते ही हैं कि किसी भी तरह से हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, सब विघ्न जो आ रहा है वो विघ्न टल जाए किसी तरह। तो फिर मैंने जब टाइम था निकलने का, तो जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि दीदी यहाँ इस तरफ जहाँ हम रहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, आप आ सकते हो, सेफ है आना। तो मैं निकल गई वहाँ, और वहाँ मैं पहुँची तो मैंने देखा बिल्कुल बढ़िया मौसम था, कोई तूफान वगैरह नहीं और सब सूखा, जैसे कि वहाँ बारिश भी नहीं हुई। फिर मैंने उनको पूछा क्या सचमुच आया ही नहीं, तो उसने कहा नहीं आया लेकिन 10 किलोमीटर दूर तक था, यहाँ नहीं आया। तो अपने आप ही वो बदल गया रास्ता, जैसे मैंने कहा आपको। तो हमने अच्छी तरह से जो भी हमारी सेवा थी वो की, और उसमें एक युगल थे, वो जब आए प्रोग्राम में वो उसी एरिया में रहते थे जहाँ तूफान आया। तो उन्होंने भी अपना अनुभव सुनाया। वो बहन ने कहा मैंने सारी रात योग किया, मतलब क्या अनाउंस हुआ, जो इस एरिया में रहते हैं सब घर छोड़कर चले जाओ। तो सारे लोग घर छोड़कर जाने लगे लेकिन हम नहीं जाना चाहते थे घर छोड़कर। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा हम यहीं बैठे हैं और सारी रात हम आपको याद कर रहे हैं, तो जो भी होगा, हाँ जो भी होगा हमें मंजूर है, हम रेडी हैं। तो बोला कि सारी रात हम जाग के हम योग कर रहे थे, और हुआ क्या, उस एरिया में सिर्फ वही मकान में कुछ नहीं हुआ, बाकी सारे मकानों में बहुत नुकसान हुआ और सारे तूफान का असर हुआ। तो ऐसे वंडरफुल बाबा के बच्चों के भी अनुभव होते हैं। तो ये स्थिति हमें प्रकृति जीत भी बनाती है। और लास्ट के समय में, जैसे मैंने कहा कि लास्ट में जब बहुत सारी हलचल वाली स्थितियां होंगी, तो अशरीरी स्थिति बनाने का जितना हमें सहज अभ्यास होगा उतना ही हम विजयी होंगे। और एक बाबा की याद में, वो तो है ही वो समय ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, वो लास्ट का पेपर हम सब जानते हैं। तो सबसे न्यारा होकर सिर्फ एक बाबा ही मुझे याद आए, वो स्थिति मेरी बने, अंतमति सो गति जिसको बाबा कहता है, तो वो तभी संभव होगा। ऐसे नहीं वो टाइम हम सोच लेंगे आत्मा है, कोई मुश्किल थोड़ी है, मैं आत्मा अपने आप को समझ लूंगी और डिटैच हो जाऊंगी, तो हो पाएंगे क्या, हो पाएंगे नहीं, बहुत काल का अभ्यास होगा, तो वो फिर अंत में भी हमें सहज नष्टो मोह बना देगा और हम बाबा की याद में रह पाएंगे और विषयी बन पाएंगे, तभी पास विद ऑनर हम बनेंगे। ओम शांति।